नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्तीय संकट से गुजर रहा शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच बायजूस अगले साल मार्च तक कंपनी परिचालन के वित्त पोषण के लिए 600-700 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की प्रक्रिया में है, सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। इस बीच कंपनी के संस्थापक बायजूस रविंद्रन ने हाल ही में वेतन का भुगतान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले घर और अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर धन जुटाया है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि बायजूस को मार्च 2023 तक एपिक और अन्य सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री से भी वित्त जुटाने की उम्मीद है। एक सूत्र ने कहा, कंपनी के परिचालन खर्चों में प्रतिमाह लगभग 50 करोड़ रुपए का अंतर है, जिसमें एक बड़ा घटक वेतन है। प्रवर्तकों ने इस अंतर को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों के शेयर, घर और कुछ अन्य अचल संपत्तियां गिरवी रखी हैं। एक सूत्र ने कहा, प्रवर्तक मार्च तक परिचालन में मदद के लिए 600-700 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की प्रक्रिया में हैं। उस समय तक एपिक और कुछ अन्य सहायक कंपनियों में आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री से हालात थोड़े सहज हो जाएंगे। आईफोन के विनिर्माण से जुड़ी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के साथ वाहन विनिर्माता हंडे समेत विभिन्न कंपनियों ने चक्रवाती तूफान से पैदा हुए हालात में तमिलनाडु में अपनी विनिर्माण गतिविधियां रोक दी हैं। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके नजदीकी इलाकों में कहर बरपाया। इससे शहर में पानी भरने के साथ उड़ानों और ट्रेनों का आवागमन भी बुरी तरह से बाधित हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे हालात में चेन्नई और उसके आसपास मौजूद कई कारखानों ने अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित कर दिया है। संपर्क करने पर हंडे मोटर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, चेन्नई और आसपास के जिलों में मौजूदा चक्रवाती परिस्थितियों में हंडे मोटर इंडिया की श्री पेरुम्बुदूर इकाई में कारखाना संचालन को आज के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इस संबंध में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन से कोई जवाब नहीं मिला है। भारत ने सोमवार को कहा कि मछली पकड़ने वाले विकसित देशों को हिंद महासागर के टूना को हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारतीय समुद्री टूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वें कार्यकारी पक्ष के समापन सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देशों द्वारा औद्योगिक रूप से मछली पकड़ने में हाल की वृद्धि ने वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा, जहां कई देशों ने अपने विशाल औद्योगिक बेड़े को हिंद महासागर की टूना संपदा का दोहन करने और उसे खत्म करने की अनुमति दी, वहीं भारत ने समुद्री परिस्थिति को बनाए रखते हुए काम किया। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अगले साल मई में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे सागर में स्थित अपनी प्रमुख परियोजना से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। ये जानकारी सोमवार को राज्यसभा को दी गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ONGC की केजी बेसिन परियोजना KGDWN 98/2 चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में आता है। परियोजना कार्यान्वयन में कई चुनौतियों और मुद्दों के कारण देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कंपनी अगले साल मई में कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे सागर में स्थित अपनी प्रमुख परियोजना से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सोमवार को कोलकाता में बैटरी को बदलने की सुविधा देने वाला अपना पहला स्टेशन खोला। IOC ने एक बयान में कहा कि बैटरी बदलने वाले इस स्टेशन की शुरुआत कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित पेट्रोल पंप पर की गई। इसकी स्थापना सन मोबिलिटी के सहयोग से की गई है। इस स्टेशन पर जाकर इलेक्ट्रिक वाहन चालक डिस्चार्ज बैटरी की जगह पूरी तरह चार्ज बैटरी ले सकते हैं। कंपनी के निदेशक वी सतीश कुमार ने कहा, बैटरी की अदला बदली वाली प्रौद्योगिकी टिकाऊ इलेक्ट्रिक परिवहन समाधानों के प्रोत्साहन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर देती है। उम्मीद है कि ये स्टेशन पूर्वी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। NCLT ने सोमवार को विमानन कंपनी स्पाइस जेट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। ये याचिका विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने विमानन कंपनी पर बकाया का दावा करते हुए दायर की थी। स्पाइस जेट की तरफ से याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाने पर NCLT की 2 सदस्यीय दिल्ली पीठ ने अमेरिकी कंपनी की याचिका खारिज कर दी। विमानन कंपनी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मार्च 2023 में उसी विवाद के लिए अपनी दिवाला याचिका वापस ले ली थी और एक नई याचिका के साथ फिर से आग्रह किया है। एनसीएलटी पीठ ने इसी साल जुलाई में सुनवाई के दौरान विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन से पूछा था कि उसने दिवाला और ऋण अक्षमता संहिता 2016 के प्रावधानों के अनुसार स्पाइसजेट को नोटिस भेजे बिना कुछ महीनों के भीतर इसी तरह की कार्यवाही के लिए फिर से एक नई याचिका कैसे दायर की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।